समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आज सवेरे में। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ सरफिरोजी, और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार सरफिरोजी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड टुडे इट्स 26th of November।
श्रोताओं, देश में हर साल 26 नवंबर यानी आज संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि भारतीय लोकतंत्र और इसके संवैधानिक मूल्यों के सम्मान का प्रतीक है। ये दिन भारत के संविधान की स्थापना और उसके महत्व को याद करने के लिए समर्पित है।
Well, yes, every year on 26th of November, India celebrates Constitution Day or संविधान दिवस to mark the day when the Constitution of India was adopted. In 1949, the constitution came into force on 26 January 1950, the day India celebrates as Republic Day.
संविधान दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने का आधार है। ये हमें समानता और स्वतंत्रता के साथ एकता और अखंडता बनाए रखने की प्रेरणा देता है।
Well, yes, Sir Firozi, for 75 years it has upheld the principles of justice, liberty, equality, fraternity, protecting citizens' rights and guiding India's democratic journey.
बिल्कुल शगुन, और इस दिन को मनाना न केवल संविधान के प्रति आदर प्रकट करना है बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने की प्रतिबद्धता भी है। तो शगुन, आज का दिन हमें सिखाता है कि संविधान दिवस के अवसर पर हम भी संविधान के आदर्शों का पालन करने का प्रण लें, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें और किसी भी तरह की हिंसा का त्याग करें। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम आज सवेरे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालेंगे मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दोनों सदनों के सांसद उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। इसके अतिरिक्त संविधान का अनुदित संस्करण मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया सहित 9 भाषाओं में जारी किया जाएगा। इस अवसर पर एक स्मारक पुस्तिका भी जारी की जाएगी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी एट द GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क इन हैदराबाद थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टुडे। Safran Aircraft Engine Services India is Safran's dedicated maintenance, repair and overhaul or MRO facility for leading-edge aviation propulsion engines. The Prime Minister's office has said in a statement that with this facility, for the first time, a global engine original equipment manufacturer or OEM has set up an MRO operation in India. The MRO facility will be a major step towards the goal of self-reliance in the aviation sector. Developing indigenous capabilities in MRO will reduce foreign exchange outflow, create high-level jobs, and strengthen supply chain resilience and position India as a global aviation hub.
भारत आज रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए औपचारिक वार्ता शुरू करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि 5 सदस्य यूरेशियन आर्थिक संघ समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा 20 अगस्त 2025 की संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर के बाद नई दिल्ली में शुरू होगी। संदर्भ शर्तों में भारतीय व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजार खोलने पर केंद्रित 18 महीने का रोडमैप तैयार किया गया है। ये पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के बीच अपनी निर्यात गंतव्यों में विविधता लाना चाहता है।
Defense Minister Rajnath Singh has said that India is ready to become global hub for shipbuilding and maritime innovation. He called on global partners to tap into the potential of India's growing shipbuilding industry and collaborate in developing next-generation maritime capabilities. Defense Minister was speaking at Samudra Utkarsh, a seminar organized by the Department of Defense Production in New Delhi to showcase the capabilities of Indian shipyards. He said that India's shipbuilding ecosystem, powered by public sector shipyards, private companies and thousands of MSMEs, has evolved into a fully integrated framework.
और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पदयात्रा आज गुजरात के करमसद से शुरू होगी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है। इस 11 दिवसीय पदयात्रा का समापन 6 दिसंबर को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा। ये यात्रा लगभग 190 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये पदयात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में एक देशव्यापी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंद के वल्लभ विद्यानगर में यात्रा के उद्घाटन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और नीमूबेन बम्हानिया भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे।
The 56th edition of the International Film Festival of India continues to touch the hearts of cinephiles and filmmakers alike. Akashvani is bringing an exclusive coverage from the ground.
और अब आपको देंगे महानगरों का हाल। तो शकुन, शुरुआत करते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से। क्या खबर है उनके बारे में?
यस, वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई। चेन्नई विल होस्ट द 2025 SD80 स्क्वॉश वर्ल्ड कप फ्रॉम 9th टू 14th दिसंबर। द इवेंट विल ब्रिंग स्क्वॉश प्लेयर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू कम्पीट फॉर द कवेटेड ट्रॉफी। The opening ceremony will be on 8th December and the coveted trophy from around the world to compete the squash players they will be gathering from around the world. The opening ceremony will be on 8th December. International dignitaries including Zena Wooldridge, President of the World Squash, William Louis Murray, CEO, World Squash and Thomas Troitsen, President of European Squash, will be present at the event. Another update from Chennai there. Chennai Metro Rail Limited will be rolling out 6 car trains by the end of 2028. It has floated tenders to procure 28 such trains that will boost capacity so that there will be a train every 4 minutes. While the present trains comprise 4 cars with a carrying capacity of around 1200 people, the 6 car trains can move up to 1800 people at a time. With the addition of 28 6 car trains to the existing 52 4 car sets, the frequency of the trains will increase on both corridors. Now we are heading to Bengaluru. Karnataka Home Minister Dr. G. Parameshwara announced setting up of a well-planned police museum in Mysuru. Speaking to media persons during the Mysuru district tour yesterday, Dr. Parameshwara said that the museum will showcase the journey of Karnataka State Police Department since its inception and that represented the department down the years. The State Home Minister visited Nazarbad Police Station, the oldest police station of Mysuru. After hearing the problems faced by the police personnel working in this heritage building, he has asked the department to submit a proposal to build a new building at the Nazarbad police station premises. Well, we are now heading to Hyderabad. Let's focus on Hyderabad now. The Telangana State Election Commission has announced a schedule for panchayat elections to be held in 3 phases on 11th, 14th and 17th of next month. Counting will be held on the day of polling for each of the phases. Polling will be held on a non-party basis. Addressing the media conference last evening, State Election Commissioner Rani Kumudini informed that the process will begin for the non-party basis elections tomorrow. There are 12,728 Sarpanch seats and 1,12,242 ward posts in 31 districts there. And now we will ask Sir Firozi to update us with Delhi, Mumbai and Kolkata.
बिल्कुल शगुन, सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कल विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस केंद्र में लगभग 90 लैब टेस्ट उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संचालित 238 आयुष आरोग्य मंदिरों के अलावा आने वाले दिनों में और भी आयुष्मान मंदिर जनता को समर्पित किए जाएंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये केंद्र सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगा। एक और खबर है दिल्ली से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अखिल भारतीय व्यापार संघ कैट को भारत व्यापक संवर्धन संगठन के सहयोग से दिल्ली में सबसे बड़ा स्वदेशी मेला आयोजित करने का आह्वान किया है। कैट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापार नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत के व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और विकास के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। और अब चल रहे हैं मुंबई मेट्रो की ओर। महाराष्ट्र की जहांगीर गैलरी में डॉक्टर पांडा की तीसरी वन्यजीव फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने कल इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में 200 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। इस दौरान इसमें जानवरों और उनके आवासों की सुंदरता का जश्न मनाते हुए मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी 2 दिसंबर 2025 तक 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि संतों ने समाज को जागरूक करने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने छत्रपति संभाजीनगर के संत जनार्दन स्वामी के आश्रम में ओम जगतगुरु जनशांति धर्म समारोह में संबोधन के दौरान ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान श्री फडणवीस ने 751 कुंडलीय यज्ञशाला प्रवेश समारोह का उद्घाटन और अनुष्ठान किया तथा भगवान शिव की पूजा अर्चना की। और एक खबर शगुन कोलकाता से भी है
जी।
अलीपुर मौसम विभाग के पूर्व निदेशक गोकुल चंद्र देवनाथ ने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पर विज्ञान से संबंधित सामग्री का अवलोकन करने और उससे प्रेरणा लेने की सलाह दी है। भारतीय विज्ञान महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित एक चर्चा सत्र में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के नेतृत्व में ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अगले महीने की 6-9 तारीख तक हरियाणा में आयोजित हो रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान के 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान के 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और शगुन, आपके पास क्या जानकारी है मौसम की?
Yes, let's find out. Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be around 26 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees Celsius. Bengaluru, there will be partly cloudy sky there. Minimum temperature is expected to be 18 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad, again, expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature, minimum temperature, will be around 19 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees Celsius. And now, Sir Firozi, we are bringing for our listeners two special reports. The first one, the 56th edition of the International Film Festival of India, IFFI, continues to touch the hearts of cinephiles and filmmakers alive. Akashwani is bringing an exclusive coverage from the ground.
The vibrant peacock of IFFI 2025 continues to spread its colorful wings, sprinkling the magic of cinema everywhere. The rich tapestry of cinema's fabric, woven together with creativity, cinematic brilliance and technology, is presenting all kinds of cinema. From small filmmakers like Jigar Nagana and Jitendra Mishra, who have made the film The Whispers of the Mountains, to big banner films like Thudarum, directed by Tarun Murthy and featuring legendary actor Mohanlal, both are lending unforgettable views at IFFI 2025. However, when these beautiful films are shining even more under Goa sky, a documentary film on famous writer Amrit Lal Nagar called Jonk University ke Vice Chancellor Amrit Lal Nagar, made by filmmakers Rajesh Amrohi and Savita Sharma Nagar, brought alive the witty writer's relationship with his very own Chowk in Lucknow.
लखनऊ का चौक और मुझे लगता है किसी भी शहर का चौक उस शहर की असलियत को बयां करता है, उसके रंगों को बयां करता है। और चौक लखनऊ वो इलाका है जिसने बहुत सारे दौर, आजादी से पहले का, नवाबों का, मुगलिया, वो सारा दौर है। और नागर जी उसको डॉक्यूमेंट, उनके सामने अगर चौक का जिक्र आए, और नागर जी एक्यूट डायबिटिक होते हुए ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, और राम आसरे की दुकान आपको पता है सर, राम आसरे की मिठाइयाँ ऐसी हैं कि विदेशों से लोग आते हैं, और वो एक चौक की गलियों में ही आप एक बार एक बनारसी बाबू नागर जी के घर आए। अब वो नागर जी का तो द्वार होता था पूरा खुला है सबके लिए, और ठहाकों की गूंज होती थी, और नागर जी इंतजार करते थे कि तू आए और उसकी वजह से मुझे भी मिठाई। तो नागर जी तो अब उन्होंने जो बनारसी बाबू आए तो उन्होंने अपने बनारस की मिठाइयों की तारीफ शुरू कर दी, सारे बनारस की, तो क्या नागर जी आप कभी आइए और खाइए। नागर जी को लगा भैया तो ज्यादा हो रही है, मतलब लखनऊ की कच्ची हो रही है, पर भैया तुम जरा थोड़ी देर रुको, हमें कुछ बहुत जरूरी काम आया है, तो मतलब ये गए और वो आए। घर में तो सभी को पता था मेहमान नवाजी है, क्योंकि और फौरन ही गली के बाहर ही तो थी, और राम आश्रे बच्चे उनको बोलते हैं भैया ऐसी तोड़ की मिठाई मुझे दे दो अभी, हमें एक बनारसी को पटकने दे दो। और वही हुआ कि उन्होंने मलाई की गिलौरी और मिठाइयाँ जब लाए, उनको खिलाई और उनके मुंह से कहलवाया कि नागर जी आगे से लखनऊ चौक जो है उसकी बात ही कुछ और है। आज भी आप जाएंगे सर, अगर आपने नागर जी का नाम लिखा कि हम नागर जी के घर जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बैठे फ्री की तीन चार नहीं लगभग पाँच के मिठाइयाँ खिलाएंगे।
We'll keep bringing more such exciting interviews with filmmakers right from where the buzz is. With Nikhil and Adarsh, this is Saira Mujtaba for Aaj Savere from IFFI, Goa.
Moving on to report number two. Well, every year, as November unwraps its golden mornings, India International Trade Fair rises like a vibrant tapestry, threads from every corner of the country, weaving stories of skill, spirit and self-reliance. This is more than a fair. It is an economy in motion, a marketplace where handmade dreams meet global demand. We have a detailed report.
This year's India International Trade Fair is more than a celebration of craft and culture. It is a catalyst for growth. By unlocking new markets for rural artisans, it seeks to uplift their livelihood and energize the nation's economy. One can almost hear the heartbeat of India's villages. Every stall at the fair is a livelihood. The pavilion becomes a sensory map of the state, from ragi snacks to traditional pickles to handlooms that tell their own stories. Amid the clink of brass from Aligarh, an exhibitor from Uttar Pradesh says, the One District One Product platform at IITF has given him the opportunity to showcase and promote his products.
Uttam Sharma hai, main Aligarh se belong karta hu. Main jo hamara kaam hai wo brass statues ka hai. Sari Hindu culture ke according hum brass statues mein murtiyan banate hain. Baki ye ODOP ke through ye humko yahan pe stall lagane ka mauka mila hai. Ye ek bahut acha platform hai.
In the vibrant twist of Bandhani from Rajasthan, Manju from Churu district beams with joy as her sales rise and her profits soar.
मेरा नाम मंजू है, मैं राजस्थान चूरू से हूँ, मेरा काम है टाई एंड डाई का, बंदेज का। तो बंदेज का काम जैसे हम 2013 से काम कर रहे हैं, समूह में जुड़ी हुई महिलाएं, और मेरे गांव में 22 एसएससी चल रहे हैं, 22 एसएससी की सभी महिलाएं बंदेज का काम कर रही है। तो अभी मुझे दिल्ली यहाँ प्रगति मैदान में आने का मौका मिला है, तो मेरी अच्छी सेल हो रही है टाई एंड डाई की।
इन द बोल्ड ब्लूज ऑफ अजरक फ्रॉम भुज, गरवा निर्मला फ्रॉम गुजरात थैंक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द सर्ज इन द सेल्स।
मैंने अपना मॉडल का जो कपड़ा है वो यहाँ बेचने के लिए आई हूँ, और आज 8 दिन हो गए, इसमें हमें 1,60,000 का व्यापार भी कर लिया है, और मैं पहली बार ही आई हूँ, पर अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि कैसे प्रॉफिट कमाया जाए। ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम महिलाओं को कमाने का तक देता है।
As visitors pause, admire and buy, they carry pieces of heritage, hope and hard work. When rural hands prosper, the nation's economy blossoms. And this year, the number speaks a story of their own. With footfalls soaring, businesses booming and artisans earning more than ever, the fair is giving a meaningful boost to India's economic momentum. This is Sanyukta and Komudi.
शगुन, हमने प्रोग्राम की शुरुआत में एक बहुत ही खास दिन की बात की. आज यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस तो मनाया जा ही रहा है.
कॉन्स्टिट्यूशन डे, यस.
बिल्कुल. और क्यों ना एक और दिन जो बहुत खास है आज के इतिहास में, उसकी भी बात कर ली जाए.
Well, yes, National Milk Day is observed on 26th of November every year to mark the birth anniversary of Dr. Varghese Kurien, regarded as the father of the white revolution in India.
बिल्कुल शगुन, और ये दिन उन लाखों किसानों के सम्मान में मनाया जाता है जिनके योगदान से भारत डेयरी क्षेत्र का अग्रणी उत्पादक बना हुआ है.
Well, yes, the day honors millions of farmers whose commitment sustains the country's leadership in milk production and strengthens its journey towards a resilient, inclusive and nutritionally secure future.
पिछले 11 साल में भारत के डेयरी क्षेत्र में 70% की वृद्धि हुई है. ये क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 5% का योगदान देता है और इससे 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधे रोजगार प्राप्त होता है. वहीं महिला किसान उत्पादन और भंडारण में अहम भूमिका निभाती हैं.
Well, if we talk about milk, milk occupies a central place in India's nutritional landscape, providing high quality animal protein and essential nutrients such as calcium, magnesium, potassium and other micronutrients in easily absorbable forms. Firuze.
और बिल्कुल शगुन, और महिलाओं के नेतृत्व की अगर इस क्षेत्र में बात करें तो महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समिति, उत्पादक संगठनों और डेयरी संस्थानों की बढ़ती अहमियत इस क्षेत्र की सभी को साथ लेकर चलने के आदर्श और अर्थव्यवस्था पर इसके बढ़ते प्रभाव को दिखाती है.
Well, women play a significant role in production and collection, as you are also rightly mentioning, the growing prominence of women-led cooperatives, large-scale producer organizations and major dairy institutions underscores the sector's inclusivity. The reforms under the GST Council now, Sir Firozi, enhance processing capacity and the focus of White Revolution 2.0 further reinforce India's commitment to a stronger and more sustainable dairy system.
बिल्कुल शगुन, और आज के दिन कुछ और खास भी घटनाएं हुई थी तो उनका भी जिक्र कर लेते हैं.
यस, एंड वी आर बिगिनिंग विद द ईयर 1924. आफ्टर द डिफीट ऑफ द व्हाइट रशियंस एंड द चाइनीज, द मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक वाज प्रोक्लेम्ड.
26 नवंबर 1941 यानी आज के ही दिन 6 विमान वाहक पोतों और अन्य सहायक जहाजों से युक्त एक जापानी नौसैनिक दल जापान से रवाना हुआ और पर्ल हार्बर पर एक आश्चर्यजनक हमले के लिए पूर्व की ओर बढ़ा. 26 नवंबर 1948 को बॉस्टन में पहला इंस्टेंट पोलराइड कैमरा बिक्री के लिए आया.
Well, in 1941, again, the holiday of Thanksgiving Day was established officially on this day, which is 26th of November, in the United States. Now, in the year 1953, Britain's upper house, the House of Lords, approved a resolution moved on this day to start a commercial television channel in the country.
और 1965 में आज ही के दिन फ्रांस ने अपना पहला उपग्रह एस्टेरिक्स प्रक्षेपित किया.
In 1992, Queen Elizabeth II became the first British monarch to pay income tax.
और 2018 में नासा का इनसाइट मिशन 7 महीने की यात्रा के बाद आज मंगल ग्रह पर उतरा.
जी.
और श्रोताओं, अब उन शख्सियतों को याद करते हैं जिनकी आज यानी 26 नवंबर को निधन हुआ था. सबसे पहले याद कर रहे हैं तपन रॉय चौधरी को. ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे. इनके द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें हैं बंगाल अंडर अकबर एंड जहांगीर, जिन कंपनी इन कोरोमंडल, और इसके अलावा बंगाल नामा, द वर्ल्ड इन अवर टाइम भी इन्होंने लिखा.
Well, yes, a Padma Bhushan awardee, Tapan Rai Chaudhary, long-time resident of Oxford, where he accepted a readership in South Asian history at the university in 1973. Well, Tapan Rai Chaudhary's scholarly range was Very great. Moving from the Mughal period through the 19th and into the 20th century, and he was equally at home in economic, social, as well as political history. Well, today, we are also remembering Yashpal Singh, Hindi language writer, commentator, socialist and an essayist. Well, his career as a writer began in the 1930s and he was associated with the Progressive Writers Movement. This is a literary movement that aimed to use literature as a tool for social and as well as political change. He wrote extensively on various social issues and the freedom movement also. And he actually won the Hindi Language Sahitya Academy Award for his novel Meri Teri Uski Baat and also a recipient of the Padma Bhushan.
आज ही जयंती है वी के मूर्ति की. ये भारतीय सिने जगत में एक जाना पहचाना नाम है. ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर रहे. एक कैमरामैन के रूप में वी के मूर्ति ने अब बहुत नाम कमाया. इनके कैमरे का जादू, मुस्कुराते होठों की उदासी, आंखों के काले घेरों की स्याह नमी, गुलाबी सर्दियों की गुनगुनाती गर्माहट और किताबों में छुपी चिट्ठियों से उठती प्रेम की खुशबू सब कुछ कैद कर सकता है. वी के मूर्ति कला और तकनीक के अद्भुत सम्मिश्रण तथा हिंदी सिनेमा में प्रकाश और छाया के अतुलनीय प्रयोगों का नाम है. वे एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त की टीम के साथ जुड़े रहे. प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद और साहब बीबी और गुलाम जैसी गुरुदत्त की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में इन्होंने लाइट और कैमरे से चमत्कार उत्पन्न करके दर्शकों का मन मोह लिया. इन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए भी चुना गया.
Acclaimed Indian cinematographer. Well, his pioneering work in the Indian film industry is well known, and his cinematography played a crucial role in creating the distinctive visual identity of the films which you also mentioned, Kagaz Ke Phool, Saheb Bibi aur Gulam. And V.K. Murthy's dedication to his craft earned him several awards and accolades. Sir Firozi has mentioned that for us.
और आज ही वर्गीस कुरियन यानी प्रसिद्ध उद्योगपति और श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले की जयंती है. भारत को दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने वाले शख्स वर्गीस कुरियन को आज हम याद कर रहे हैं. श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले इस शख्स ने देश को सहकारी दुग्ध उद्योग का एक मॉडल दिया. अपनी सोच से इन्होंने दिखा दिया कि एक छोटे किसान पर भी भरोसा किया जाए तो वो किस तरह चीजों को बदल सकता है. केरल के एक छोटे से गांव कोझिकोड में 26 नवंबर साल 1921 में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी एक सकारात्मक सोच ने दूध के क्षेत्र में दुनिया में क्रांति ला दी. आज पूरा देश उनके प्रयासों को याद कर रहा है. हमने भी इतिहास के पन्नों को पलटते हुए राष्ट्र दुग्ध दिवस के अवसर पर उनकी बात की और भारत में दूध की क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, इसे लाने का श्रेय वर्गीस कुरियन को ही जाता है.
Well, yes, the architect of India's white revolution, which transformed the country from an importer of dairy products to the world's largest milk producer through a system of farmer cooperatives. Well, Dr. Kurian always regarded himself as an employee of the farmers, who would do anything to bring prosperity in their favor.
वर्गीस ने गुजरात के आणंद में एक छोटे से गैराज में अमूल की शुरुआत की, जो आज घर घर की कहानी बन गया है. वर्गीस ने साल 1946 में दो गांव के लोगों को जोड़कर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की. कुरियन को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया. इसके साथ ही रेमन मैक्सिसे पुरस्कार, कार्नेगी वटलर शांति पुरस्कार और अमरीका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी कुरियन को नवाजा गया.
Well, yes. Today, we are also remembering the eminent tabla maestro, Pandit Chandrakant Kamath. So, early life and training, it was in Thule, because he was born in a family with strong musical traditions.
बिल्कुल. शगुन कामत ने गुरु रघुनाथ शिवालकर, राम भाव वष्ट और दिगंबर यमजी कदम से शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी प्रशिक्षण लिया. 1956 से 1951 तक कामत ने संगीत नाटकों में तबला संगत भी की, जिनमें हीरा भाई बडोरकर जैसे नाम शामिल थे. इस दौरान कामत ने आकाशवाणी पुणे के लिए एक स्टाफ कलाकार के रूप में भी काम किया. तो आइए आपको सुनाते हैं पंडित भीमसेन के मियां मल्हार राग पर चंद्रकांत कामत की ये जुगलबंदी. मद सारंग श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और शगुन को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
एंड वी आल्सो थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।